14 फरवरी की रात अनंत पर बड़ी भारी थी। बड़ी मुश्किल से वो सो पाया कि तभी किसी आहट से उसकी नींद खुल गई। जब उसने अपने कमरे से बाहर आकर देखा तो उसके होश उड़ गए। वो कहीं दूसरी जगह पर पहुंच गया था। पहले उसे लगा कि यह उसका सपना है, मगर जल्द ही उसे यकीन हो गया कि यह उसका सपना नहीं था। लेकिन वो इस वक्त कहां आ गया था? ये जगह तो उसे जानी पहचानी लग रही थी। ये वो जगह थी जहां के बारे में सोचकर भी उसकी रूह कांप उठती थी। ये जगह थी काल चंकू पहाड़। वो कहानियां शो धूम्रपान, मद्यपान या किसी और प्रकार के व्यसन का समर्थन नहीं करता है और ना ही किसी प्रकार के अंधविश्वास या रूढ़िवादी विचार को बढ़ावा देता है। ये शो केवल कहानियों की एक श्रृंखला है। इसमें वर्णित सभी पात्र, स्थान और घटनाएं काल्पनिक हैं। श्रोताओं को अपने विवेक से फैसला लेने की सलाह दी जाती है। आप सुन रहे हैं पॉडकास्ट वो कहानियां। प्रस्तुत है सीजन 2 की दूसरी कहानी कालशंकु, दूसरा अध्याय, भाग 24। लेखन और आवाज दीपक मेड़तवाल, कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट मोहित अग्रवाल। कभी कभी सुकून भी खलने लगता है। अनंत का 9 फरवरी से 14 फरवरी तक का इस बार का सफर जिस तरह सुकून भरा था, उससे उसे शक होने लगा था कि जरूर कहीं ना कहीं कोई बड़ी गड़बड़ है। 14 फरवरी की रात किसी आहट से जागकर जब वो कमरे से बाहर निकला तो उसके पैरों तले से जमीन नहीं खिसकी, बल्कि जमीन बदल गई थी। वो एक पथरीली जमीन पर था, वो काल शंकु पहाड़ पर था। वो कुछ समझ नहीं पा रहा था कि वो यहां कैसे पहुंच गया है और यहां क्या कर रहा है। अनंत ने ऊपर देखा, आसमान में उसे वही ग्रह नजर आने लगे जो 15 तारीख की रात को आसमान में नजर आने वाले थे। उसके आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। नहीं, ये कैसे हो सकता है? आज तो 14 तारीख है, ये ग्रह तो 15 तारीख को आसमान में आने वाले थे। ये क्या हो रहा है? वो थोड़ा ऊंचाई की ओर आगे बढ़ा जहां से उसे पूरा नजारा दिखाई देने लगा। वो कुछ समझ नहीं पा रहा था कि ये क्या हो रहा है। वो वाकई में कालशंकु पहाड़ पर था। मैं कालशंकु पहाड़ पर ही हूं, मगर मैं यहां कर क्या रहा हूं? तभी अचानक से अनंत का पैर लड़खड़ा गया और वो जमीन पर गिर पड़ा। उसे लगा जैसे माहौल में अचानक से कुछ बदलाव आया है। वो संभल कर फिर से खड़ा हुआ। उसे सामने कुछ लोगों के बात करने की आवाज आने लगी। यह आवाज किसकी है? वो आवाज की दिशा में बढ़ चला। वहां का नजारा देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। वहां अनूप सिंह खड़ा हुआ था। इस वक्त अनूप सिंह किसी से बात कर रहा था। ये किससे बात कर रहा है? अनंत चोरी छिपे थोड़ा और पास पहुंचा, जहां अचानक से उसे किसी के हंसने की आवाज आई, जिसे सुनकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। ये तो सुशांत की आवाज है, मगर वो यहां क्या कर रहा है? सुशांत वहीं अनूप सिंह के पास खड़ा था। उसने धीमे से सुशांत को आवाज दी। सुशांत, सुशांत। लेकिन सुशांत ने कोई जवाब नहीं दिया और वो अनूप सिंह के साथ आगे बढ़ चला। अनंत के दिमाग में हजारों सवाल उठने लगे। ये क्या हो रहा है? सुशांत अनूप सिंह के साथ क्या कर रहा है? अचानक अनंत के दिमाग में अच्छी बुरी हजारों संभावनाएं तैरने लगी, मगर उसे कुछ समझ नहीं आया। उसे जोर से सुशांत को आवाज दी। सुशांत, सुशांत। कुछ सेकंड में सुशांत बड़े आराम से चलता हुआ उसकी तरफ आने लगा। सुशांत ने अपनी जेब से सिगरेट का पैकेट निकाला और सिगरेट सुलगा ली। उसने फिर से सुशांत को आवाज दी, लेकिन सुशांत पता नहीं कहां देख रहा था। वो भागकर उसके पास गया। तभी सुशांत ने कहा, अभी आया। सुशांत ने जल्दी जल्दी सिगरेट के एक दो कश लिए और हड़बड़ी में भागकर दूसरी तरफ चला गया। अनंत भी सुशांत के पीछे पीछे चला गया। वहां का नजारा देखकर उसके होश उड़ गए। वहां भभूति बल्ली जंजीरों में बंधा हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे वो बेहोश था। अनंत भागकर सुशांत के पास गया, लेकिन सुशांत जैसे उस पर ध्यान ही नहीं दे रहा था। अनूप सिंह ने सुशांत से कहा, सुशांत जी, ये लोग इसी लायक हैं, साले डकैत। अनंत जी ने कितना समझाया था इनको, लेकिन ये लातों के भूत हैं, बातों से नहीं मानते हैं। मैं तो कह रहा हूं इसे जिंदा छोड़ना ठीक नहीं है, इसे यहीं मार डालना चाहिए, पता नहीं बाद में क्या मुसीबत पैदा करेगा। सुशांत ने जवाब दिया, नहीं, हम अनंत के कहे बगैर एक कदम भी नहीं उठा सकते हैं। अनूप सिंह हंसने लगा, अनंत जी बड़े सीधे हैं, मैंने उन्हें कई बार कहा था कि ये लोग भरोसे लायक नहीं है, मगर उन्होंने इसके बाद भी इन पर भरोसा किया। और सच बताऊं मेरे दिमाग में बिल्कुल भी नहीं था कि यहां ये सब हो सकता है, मगर असल में उन्होंने ही मुझे वार्न किया, मुझे हिंट दिया कि मुझे क्या करना है। सुशांत ने पूछा, मतलब? अनूप सिंह ने कहा, मतलब ये कि मैं और मेरे पूर्वज बरसों से कालशंकु के पीछे लगे हुए थे, लेकिन इसका कोई पता नहीं था। मुझे पता था कि कालशंकु का समय आ चुका है, लेकिन कालशंकु का कोई पता नहीं लगा। मैंने बल्लियों में अपने सोर्सेस से पता किया कि कहीं शंकु उनके हाथ तो नहीं लग गया, बट आई वॉज अमेज्ड, उनको भी इस बारे में कुछ पता नहीं था। फिर दो दिन पहले आप लोग मेरे पास आए और अनंत जी ने मुझसे काल शंकु के बारे में बात की। सही बताऊं तो मुझे कुछ समझ नहीं आया कि वो क्या कह रहे थे। ये बात पहले भी हो चुकी है, हम पहले कई बार मिल चुके हैं, मैं हथियारों का इस्तेमाल करूंगा। उस पूरी बात में मुझे बस ये समझ में आया कि काल शंकु के पीछे बल्ली भी पड़े हुए हैं, और मुझे उनसे अगर काल शंकु हासिल करना है तो हथियार काम में लेने ही पड़ेंगे। बस मैंने तैयारी शुरू कर दी। जब अनंत जी ने कहा कि हमें बगैर हथियारों के चलना है तो मुझे बड़ी हंसी आ रही थी, लेकिन मैंने अपनी पूरी प्लानिंग कर ली थी, और देख लीजिए मेरी प्लानिंग आखिरकार काम आ ही गई। अगर आज मेरे आदमियों के पास हथियार नहीं होते तो कालशंकु इन बल्लियों के हाथ में होता। सुशांत ने कहा, ओ तो अनंत ने आपको बताया कि आपको क्या करना है? अनूप सिंह ने कहा, साफ साफ तो नहीं कहा, मगर इशारा तो कर ही दिया, और समझदार को इशारा ही काफी होता है। वैसे अनंत जी हैं कहां? अनंत जो एक तरफ खड़ा पूरी बात सुन रहा था वो उनके सामने आ गया। उसने कहा, मैं यही हूं। लेकिन कमाल की बात, किसी ने उस पर ध्यान नहीं दिया। अनंत को ताज्जुब हो रहा था कि ये लोग मेरी तरफ देख क्यों नहीं रहे हैं। वो सुशांत और अनूप सिंह के ठीक सामने पहुंच गया, लेकिन अभी भी उनका ध्यान उस पर नहीं था। उसने दोनों को नाम लेकर पुकारा, मगर उन्होंने उसकी बात पर कोई जवाब नहीं दिया। अनंत बोल उठा, ये क्या हो रहा है? ये मुझ पर ध्यान क्यों नहीं दे रहे हैं? तभी उसे बूढ़े के चिल्लाने की आवाज आई,
थाको विनाश होनो निश्चित है, निश्चित है, निश्चित है।
अनंत भागकर उधर गया जहां से उसे बूढ़े की आवाज आ रही थी। बूढ़ा गुस्से में बरस रहा था और उसके सामने खड़ा दूसरा अनंत उसे समझाने की कोशिश कर रहा था। यह नजारा देख रहे अनंत को समझ आ गया कि वो इस समय यहां मौजूद होकर भी मौजूद नहीं है। वो बुदबुदाया, अगर ये सपना नहीं है तो मैं इस वक्त भविष्य देख रहा हूं। हां, मैं भविष्य ही देख रहा हूं, मगर क्यों, आखिर क्यों? अनंत समझने की कोशिश करने लगा, मगर सब कुछ उसकी समझ से बाहर था। तभी वहां फिर से कुछ हुआ। अनंत को लगा जैसे माहौल में तेजी से कुछ बदलाव आया है। असल में यह बदलाव समय की गति का था। मात्र 2-3 सेकंड में वहां का नजारा बदल चुका था। वहां चारों तरफ खून ही खून था। वहां काफी सारी लाशें गिरी हुई थीं। शायद बल्लियों के कुछ साथियों ने वहां हमला किया होगा, जिसके बाद वहां फिर से मारकाट मच गई थी। अनंत बदहवास सा चारों तरफ देख रहा था। उसने देखा भभूति को भी गोली लग चुकी थी और सुशांत भी दम तोड़ चुका था, और बल्लियों के बूढ़े बाबा ने भी उसके सामने ही दम तोड़ दिया। लेकिन इससे ज्यादा बड़ा झटका उसका इंतजार कर रहा था। अनूप सिंह ने दूसरे अनंत को, यानी उस समय के अनंत को, गन पॉइंट पर ले रखा था, और भविष्य का अनंत, वो इस वक्त उसे समझाने की कोशिश कर रहा था कि बूढ़ा पुजारी मर चुका है, इसलिए देवता से बात करने का आखिरी रास्ता भी खत्म हो चुका है। अनूप सिंह ने एक क्रूर हंसी हंसते हुए कहा,
अनंत जी,
जब आपने मुझे कालशंकु के बारे में बताया था तब आपकी बातों को मैं समझ नहीं पाया। आप पता नहीं क्या कह रहे थे, लेकिन मुझे एक बात समझ आ गई थी कि कालशंकु के बारे में ऐसी कोई बात है जो मुझे पता नहीं है, इसलिए मैंने इस बारे में जानकारी ढूंढनी शुरू की। मेरी विरासत से मुझे एक किताब के फटे हुए पन्ने हाथ लगे। उनमें सब कुछ लिखा था, सब कुछ, ऐसा कुछ जो मुझे पहले पता नहीं था। उसमें लिखा था कि काल शंकु समय के चक्र को नियंत्रित कर सकता है। बस फिर मुझे समझ आ गया कि जो हो रहा है वो पहले भी हो चुका होगा। और उन्हीं फटे हुए पन्नों में यह भी लिखा था कि ना केवल बल्ली पुजारी बल्कि वो शख्स जो काल शंकु को यहां तक लेकर आता है वो भी देवता से बात कर सकता है। और अब ये मैं अच्छी तरह जानता हूं कि आप ही मेरी आखिरी उम्मीद हैं। आप मेरे लिए देवता से बात करेंगे। दूसरे अनंत ने कहा, मगर मुझे देवता की भाषा नहीं आती है। अनूप सिंह ने कहा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैं जानता हूं कि आप देवता से बात कर लेंगे। वैसे जितनी जानकारी आप लेकर घूम रहे हैं इसे तो यही समझ आता है कि आप पहले भी देवता से बात कर चुके हैं, इसलिए आप मेरे लिए देवता से बात करेंगे। दूसरे अनंत ने दृढ़ता से कहा, मैं ऐसा हरगिज नहीं करूंगा। मैं अपनी जान दे दूंगा मगर ऐसा नहीं करूंगा। अनूप सिंह फिर से हंसने लगा। भविष्य में सारी घटनाओं को देख रहे अनंत ने भागकर अनूप सिंह पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन वो नाकाम रहा। उसे समझ आ गया कि वो केवल एक परछाई है, वो केवल दृष्टा है, वो केवल देख सकता है, कुछ कर नहीं सकता। इसलिए उसके पास खड़े रहकर तमाशा देखने के सिवा कुछ नहीं है। इधर भविष्य के अनंत ने अनूप सिंह की बात मानने से इनकार कर दिया। ऐसे में अनूप सिंह ने अपना आखिरी दांव चला। उसके इशारा करते ही उसके आदमी ज्ञान और राज को वहां ले आए। अनंत के कुछ समझने से पहले ही उन दोनों को गोलियों से भून दिया गया। अनंत चीख पड़ा, लेकिन अनूप सिंह को उस पर रत्ती भर भी रहम नहीं आया। उसने फिर से अपने आदमियों की तरफ देखा। उसका इशारा मिलते ही उसके आदमी इस बार नलिनी को लेकर वहां आ गए। अनूप सिंह ने अनंत से बेरहमी के साथ कहा, अब तो आपको पता लग गया होगा कि अगर आपने मेरी बात नहीं मानी तो नलिनी जी भी इस दुनिया में नहीं रहेंगी और उसके बाद आप भी नहीं। काल शंकु मुझे नहीं मिला तो फिर किसी को नहीं मिलेगा। 100 साल बाद फिर से कोई अनूप सिंह आएगा और इसे हासिल करके रहेगा। अनंत ने नलिनी की तरफ देखा। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसके पास अब कोई रास्ता नहीं था। अनूप सिंह ने काल शंकु को निकालकर अपनी जगह पर रखा। कुछ देर में शंकु में कंपन होने लगे और रोशनी का एक पुंज आसमान की तरफ बढ़ चला। देवता फिर से प्रकट हुआ और उसने सबसे पहले भविष्य में आए अनंत की तरफ खा जाने वाली निगाहों से देखा। तभी माहौल में फिर से कुछ बदलाव हुआ और भविष्य में आए अनंत की आंखों के आगे अंधेरा छा गया। उसने आंखें खोली और चारों तरफ टटोलने लगा। कुछ देर में वहां रोशनी होने लगी। उसने देखा वो अपने कमरे में ही है। वो चौंक कर एकदम से उठ बैठा और हालात को समझने की कोशिश करने लगा। ये सपना था क्या? उसने घड़ी में देखा, रात के 1:30 बजने में कुछ वक्त था। वो अपने कमरे में ही था। हां ये सपना ही था। तभी उसकी निगाह अपने हाथ पर बने नाखून के निशान पर गई। वहां अभी भी खून दिखाई दे रहा था। अनंत बोल उठा, नहीं ये सपना नहीं था। बुरी तरह से उलझा हुआ अनंत पूरी बात को समझने की कोशिश करने लगा। ये सपना नहीं था, ये सपना नहीं था तो फिर ये क्या था? हां मतलब मैं भविष्य में था। काल शंकु ने, उस देवता ने मुझे बताया कि क्या होने वाला है, मगर मतलब मैं कुछ नहीं बदल सका, कुछ भी नहीं बदल सका। अनंत सिलसिलेवार तरीके से सारी बातों को समझने की कोशिश करने लगा। तो इस बार केवल सुशांत ही नहीं बल्कि राज, ज्ञान और नलिनी भी? नहीं, मैंने उन सबको भी इसमें घसीट लिया है। इस बार कोई नहीं बचेगा, कोई नहीं बचेगा। और अनूप सिंह, अगर उसे शक्तियां नहीं मिली तो वो किसी को नहीं छोड़ेगा। मैंने क्या कर दिया है, क्या कर दिया मैंने? ये सब मेरी गलती है, मेरी गलती है। अनंत अपना सिर पकड़कर बैठ गया। तभी उसकी घड़ी में एक बीप की आवाज हुई। ये बीप की आवाज उस अलार्म की थी जो हर बार काल शंकु में कंपन शुरू होने से 30 सेकंड पहले उसकी घड़ी में बजा करता था। एकदम से उसके दिमाग में कुछ कौंधा उसने बैग में से काल शंकु को निकालकर टेबल पर रख दिया। कुछ ही देर में काल शंकु में कंपन शुरू हो गए। अनंत भीगी आंखों से एकटक काल शंकु को देख रहा था। काल शंकु के कंपन धीरे धीरे तेज होने लगे। अनंत बार बार दोहरा रहा था, ये सब मेरी गलती है, इस बार कोई नहीं बचेगा। अगर मेरा प्रारब्ध यही है तो मुझे ये मंजूर नहीं है। मैं इसे नहीं घटने दूंगा। अनंत के सिर पर जैसे कोई भूत सवार हो गया था। गुस्सा और दर्द दोनों उस पर हावी हो चुके थे। अचानक से उसने काल शंकु को हाथ में उठा लिया। उसे पता था कि इसका अंजाम क्या होने वाला है। वो जोर से गरजा, ना मैं रहूंगा ना ये सारी कहानी होगी। काल शंकु के कंपन अपने चरम पर पहुंच चुके थे। कुछ ही सेकंड में बिजली कड़कने वाली थी। अनंत ने अपने आप को अंजाम के लिए तैयार कर लिया। आखिरकार बाहर जोर की बिजली कड़की, साथ ही बिजली कड़की काल शंकु में भी। एक तेज बिजली का झटका अनंत के शरीर में दौड़ गया। वो जमीन पर बेसुध होकर गिर पड़ा। कुछ देर बाद उसे होश आया। इतने बड़े बिजली के झटके के बाद भी न जाने वो कैसे बच गया। अनंत गुस्से में चिल्लाया, मुझे क्यों जिंदा छोड़ दिया, क्या चाहते हो मुझसे? अनंत काल शंकु के साथ ऐसे बहस कर रहा था जैसे वो उसकी बात सुन रहा हो, लेकिन वो तो एक बेजान धातु का टुकड़ा ही था जो अनंत की जिंदगी से जुड़ गया था। अनंत काफी देर तक अपने आप को और उस शंकु को कोसता रहा। फिर उसने कुछ सोचा, अगर ये शंकु ही ना रहे तो क्या होगा, ना रहेगा बांस, ना बचेगी बांसुरी। और अनंत ने शंकु को तोड़ना शुरू कर दिया। उसने उसे एक दो बार जमीन पर दे मारा, लेकिन उस पर कोई असर नहीं हुआ। कोई और वक्त होता तो अब तक इतना शोर शराबा सुनकर दूसरे लोग वहां आ जाते, लेकिन इस वक्त अनंत इस जगह पूरी तरह से अकेला ही था। सुरक्षा के लिए वो काल शंकु के साथ बाकी साथियों से अलग बियाबान में ठहरा हुआ था। अनंत पर पागलपन सवार हो गया था। उसने अब पागलों की तरह उसे जमीन पर मारना शुरू कर दिया। इसी बीच गलती से अनंत के हाथ पर भी चोट लग गई, लेकिन अपने पागलपन के आगे इस वक्त उसे दर्द भी महसूस नहीं हो रहा था। तभी काल शंकु में हल्की चमक पैदा हुई। यह देख अनंत के चेहरे पर हंसी आ गई। वो और जोर से शंकु को जमीन पर मारने लगा। काल शंकु में चमक और तेज होने लगी। जल्द ही उसके किनारे झड़ने लगे थे। शंकु अब गर्म होने लगा था। अनंत के हाथ भी अब जलने लगे थे, लेकिन वो नहीं रुका और ताकत से उसे जमीन पर मारता रहा। आखिर में एक जोर का धमाका हुआ और ऊर्जा की एक लहर कमरे में दौड़ गई। काल शंकु जमीन पर गिरा हुआ था। उसमें से रोशनी का एक पुंज ऊपर जाने लगा। अनंत जोर जोर से हंसने लगा। थोड़ी देर में ही देवता फिर से उसके सामने था। अनंत लगातार हंसे जा रहा था। देवता के प्रकट होने का उस पर कोई असर नहीं हुआ। कुछ देर में अनंत की हंसी रोने में बदल गई। लग रहा था कि वो अपना मानसिक संतुलन खो बैठा है। रोते रोते उसने घुटने जमीन पर टिका दिए और देवता के आगे सिर झुका लिया। अब वो चुप हो चुका था। थोड़ी देर के सन्नाटे के बाद देवता की आवाज गूंज उठी, मैंने तुम्हें बता दिया है कि कल क्या होने वाला है, इसलिए तुम्हारे पास कल तक का वक्त है। सोच लेना कि तुम्हें क्या चाहिए, धन, विजय, सफलता। आप सुन रहे थे काल शंकु दूसरा अध्याय पॉडकास्ट वो कहानियां पर। यह था भाग 24, लेखन और आवाज दीपक मेड़तवाल, इन एसोसिएशन विद पिक्सल सिटी प्रोडक्शंस। दोस्तों, मैं काल शंकु कहानी का राइटर नैरेटर दीपक मेड़तवाल। अगले एपिसोड में काल शंकु दूसरा अध्याय यानी सेकंड चैप्टर पूरा होने वाला है। आई होप आप लोग कहानी पसंद कर रहे हैं। कहानी के बारे में अपना फीडबैक मुझ तक जरूर पहुंचाएं, और अगर हो सके तो प्लीज प्लीज मेरी और वो कहानियां शो की थोड़ी सी हेल्प कर दीजिएगा। इफ पॉसिबल सोशल मीडिया पर शो का रिव्यू लिख दीजिएगा। शुक्रिया, और सुनते रहिए वो कहानियां।